अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन परमानंद के ये क्षण जिसका परम लाभ लेने के लिए हम लोग महापुरुषों के परम पुरुषार्थ से तैयार की हुई ये सुंदर भूमि श्री प्रेमपुरी आश्रम में बैठकर नित्य प्रति महापुरुषों की मुख से भगवान के और ऋषियों के वचनों का लाभ लेते हैं, ये हमारा आपका परम सौभाग्य है। तो ऐसा सुंदर ये स्थान अमृत बेला जिसको कहा जाता है, प्रातःकालीन सुंदर शांत वातावरण में भगवत चिंतन परमार्थ चिंतन अपने लक्ष्य के चिंतन के लिए हम लोग यहां पर एकत्रित होते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का षोडश अध्याय यानी सोलहवां अध्याय जिसको दैवी संपदा और आसुरी संपदा के नाम से जाना जाता है, और संपदा का अर्थ जैसा आपको बताया, जिस प्रकार से बाजार में जाने पर बिना अर्थ के बिना धन के आप कुछ खरीद नहीं सकते, उसी प्रकार से अध्यात्म के बाजार में भी जब तक हमारे पास दैवी संपदा नहीं होगी तब तक हम अध्यात्म के बाजार में भी कुछ खरीद नहीं सकते। चाहे उसको आपने स्वरूप की प्राप्ति कहें, परमात्मा की प्राप्ति कहें या मुक्ति की प्राप्ति कहें। तो हमारा जो विषय चल रहा था, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्, तो हम लोगों ने दो गुणों के ऊपर विशेष विचार किया। सबसे पहले जो है अध्यात्म के पथिक के लिए अनिवार्य है अभय होना, उसके बाद सत्व संशुद्धि अंतःकरण की शुद्धता के ऊपर हम लोगों ने कल विचार किया। यदि आपकी बुद्धि यदि आपका अहंकार सत्य अहंकार में परिवर्तित तो हो गया, असत्य अहंकार से निकलकर अगर हम सत्य अहंकार में स्थित हो गए, जो हमारा देहाभिमान है ये परम परमार्थ रूप में परिवर्तित तो हो गया, उसको शुद्ध अहंकार कहते हैं, अंतःकरण की शुद्धता कहलाती है। बुद्धि निश्चयात्मक हो गई, जिसको हम लोग परमार्थ सत्ता के प्रति निश्चय कर लेना कहते हैं, तो संसार के प्रति दृढ़ता जो हमारी बुद्धि में है जब वो परमात्मा के प्रति हो जाती है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से जब हमारा चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है तो ये चित्त की शुद्धता कहलाती है, और मन के संकल्प विकल्पों का परित्याग ये मन की शुद्धता कहलाती है। इस प्रकार से हमारा अंतःकरण पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, और जिस प्रकार से पारदर्शी कांच होता है, जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है तो उसके आर पार सब कुछ दिखाई देता, उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण की स्थिति हो जाती है। जैसा कि आप लोग जल में देखते हैं ना, जिस शुद्ध जल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जो स्विमिंग पूल में जैसे जल भरा होता तो इतनी मोटी परत जल की होती है, लेकिन बिल्कुल साफ नीचे की तलैटी में लगे हुए टाइल्स एकदम साफ आपको दिखाई देते हैं, लेकिन उसी पानी को अगर उसी जल को गंदा कर दिया जाए तो कुछ भी उसमें से एक इंच की दूरी पर भी स्थित कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से सबसे निकट यदि कोई चीज हमारे है तो वो कौन है? क्यों भाई, जो सबसे निकट हमारे है वो कौन है? परमात्मा है कि नहीं है? तद्दूरे तद्वंती के श्रुति क्या कहती है? श्रुति कहती है सबसे नजदीक यदि तुम्हारे कोई है तो वो परमात्मा, और सबसे दूर यदि कोई हो जाता है तो वो कौन है? हमारी अपनी अवस्था का विश्लेषण करके देखें तो हम इस समय परमात्मा के नजदीक हैं या दूर हैं? है? क्योंकि हमको अपनी परमार्थ सत्ता का बिल्कुल भी भान नहीं है। हम अपनी शरीर की सीमा को ही अपनी सीमा मान रहे हैं, मैं अमीर हूं मैं गरीब हूं, है ना। जड़ भरत जी ने जो है राजा रघुगण को ज्ञान दिया, बोले किस ब्रह्म में भ्रमित हो कि मैं स्वामी हूं, ये मेरा सेवक है, मैं जो है मोटा हूं पतला हूं दुबला हूं गोरा हूं काला हूं स्थूल हूं राजा हूं स्वामी हूं, ये सब शरीर की सीमाएं हैं, और शरीर की सीमा में गंदा हुआ जल कभी भी परमात्मा को देखने में सक्षम नहीं होता। राजा रघुगण से समझा रहे हैं। इसीलिए हम लोग शास्त्र अध्ययन तो करते हैं, अंतःकरण शुद्ध ना होने के कारण जल तो जल है, स्विमिंग पूल में जल भरा है कि नहीं भरा है, वही जल है, लेकिन जब स्वच्छ है तो नीचे का भी टाइल्स आप देख सकते हैं, और जब जरा सा भी गंदा हो जाए तो टाइल्स तो दिखना दूर, एक इंच नीचे भी कोई चीज होगी तो दिखाई नहीं देगी। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अंतःकरण को क्या करें, शुद्ध करें, और शुद्ध करने का तरीका हम लोगों ने कल चिंतन किया, और आज का जो हमारा गुण है वो है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग में यानी जो हमारा वास्तविकता में तत्वबोध जिसको हम लोग कहते हैं, ज्ञान योग भगवान ने शब्द प्रयोग किया है ना, बहुत समझने लायक चीज है गीता। भगवान ने ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग शब्द प्रयोग नहीं किए हैं, शब्द क्या है, हाँ योग, और हम लोग भगवान से आगे ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग ऐसा लगा देते हैं, मार्ग शब्द नहीं, भगवान ने सब जगह योग शब्द प्रयोग किया है ना। योग का मतलब, अरे सीधा सा मतलब है, योग का मतलब जुड़ना, मिलना, किसी चीज को जब आप आपस में मिलाते हैं तो क्या कहलाता है, योग कहलाता है, जोड़ने को योग कहते हैं। तो भगवान ने जोड़ने का जो योग है, मिलन है ना, ज्ञान योग के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, तत्व का जब आप विवेचन करेंगे तो महाराज धीरे धीरे तत्व ज्ञान के द्वारा आपको अपने परमार्थ स्वरूप की या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और इसी को जो है मुक्ति कहते हैं, तीनों चीजें एक ही हैं। तो ज्ञान योग के द्वारा जब आप तत्व ज्ञान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो तत्व ज्ञान क्या है भाई, एक किसी भी पदार्थ का छिछला रूप है, और जब उस छिछले पदार्थ के ऊपर आप विवेचन करना प्रारंभ करते हैं, जैसे आपने बाजार से एक फल खरीदा और उस फल को खरीदने के बाद आपने उसका विश्लेषण करना प्रारंभ किया यानी छिलका हटाया, तभी तो अंदर से वास्तविक फल प्रकट हुआ। तो वैसे ही तत्व ज्ञान है, यानी हर चीज के अंदर जो छिपा हुआ तत्व है, जब हम उसका अपने अंतःकरण में बुद्धि के द्वारा विश्लेषण करते हैं तो हम मूल तत्व तक पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार से जो है बिल्कुल तत्व ज्ञान को साधारण भाषा में यदि आप समझना प्रारंभ करें तो इस वस्त्र का मूल क्या है, क्यों भाई, जो आपने वस्त्र पहने हुए हैं जब इसका आप विश्लेषण करना प्रारंभ करेंगे तो महाराज आप जो है देखो कहां से कहां पहुंचते हैं। तत्व ज्ञान क्या है, है ना, तो वस्त्र का जब आपने विश्लेषण प्रारंभ किया तो बोले महाराज ये वस्त्र कहां से आया, तो बोले ये महाराज मिल में बना, कपड़े की मिल में निर्माण हुआ कि नहीं हुआ इसका। जब कपड़े की मिल देखने पहुंचे तो वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे धागों की चरखियां लगी हुई हैं और मशीन में ताना बाना बना करके इस वस्त्र का निर्माण कार्य चल रहा है। तो हमने महाराज उस फैक्ट्री मालिक से संपर्क किया कि महाराज ये सूत कहां से लाए, तो उसने पता बता दिया, हम सूत वाले के पास पहुंच गए। अब महाराज उस सूत वाले से जब हमने देखा जाकर उसकी कंपनी में, उसकी मिल में देखा महाराज, तो वहां बहुत बड़ा, चाहे ऊन का चाहे कपास का किसी का भी ढेर लगा दो और वो मशीन जो है उसमें से एक धागा तैयार कर देती है। तो महाराज उस धागे वाले से जब पूछा कि महाराज ये धागा किससे तैयार हुआ, तो उसने कहा ये कपास तुम्हारे सामने रखा है, ये कहां से आया। जब उसका पता करने गए तो उसने महाराज किसान के पास भेज दिया। किसान के पास गए महाराज, उसने कहा है, जब उससे पूछा ये कपास कहां से आया, वो खेत में ले गया महाराज, है ना, और खेत में उसने एक बीज बो दिया। क्या बो दिया, बीज बो दिया महाराज, और बोले महाराज ये बीज हरियाली होकर फूटेगा और उसके बाद इसमें एक पुष्प लगेगा और उस पुष्प में ये कपास लगेगी। तो इस वस्त्र का मूल कहां है, क्या इस वस्त्र का मूल है वो छोटा सा बीज। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। जब आप अपने आप के तत्व का निर्धारण करना प्रारंभ करेंगे, है ना। तुलसीदास जी ने बड़ी साधारण भाषा में जो है इस चीज को समझाया है। जब भगवान श्री राम के बारे में बताते हैं भोलेनाथ माता भगवती पार्वती को कि कौन है राम, तो उन्होंने कहा विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई। देखो तो जब राम की व्याख्या की बात आती है ना, तो भगवान राम के विषय में एक बहुत सुंदर सी, बहुत से लोग अलग अलग बुद्धि के होते हैं ना, तो उसमें अलग अलग विश्लेषण करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम कर जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अब जरा आप बताओ आप कौन से राम को मानते हो। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम कर जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। क्यों भाई बड़ी समस्या। हाँ, कोई कहता मैं दशरथ के बेटे को नहीं मानता, कोई कहता है ना। लेकिन जब आप जो है प्रेमपुरी के सत्संग का असर हो जाएगा तो क्या निकलेगा, वही राम दशरथ कर बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम का जगत पसारा और वही राम सब जग से न्यारा। एक ही राम है, कोई अंतर नहीं है, चाहे वो सगुण साकार रूप में हो तो और निर्गुण निराकार रूप में हो तो, एक ही चीज है। तो उसका विश्लेषण किया महाराज जी, जो यहां ज्ञान योग व्यवस्थिति दिखा रहे हैं ना, जब हम अपने मूल को भूल जाते हैं तो जगत में भटक जाते हैं। जैसे वस्त्र का मुख्य केंद्र जब आपने विश्लेषण किया तत्व ज्ञान के द्वारा तो कहां पहुंच गए, बीच पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। उसी प्रकार से जब आप अपना विश्लेषण प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले भोलेनाथ ने बताया, बोले विषय है ना, जितना भी आपको आंखों से दिखाई दे रहा ये सब क्या है, ये सब विषय हैं। विषय हैं कि नहीं है, जितना भी जो कुछ भी आपको आंखों से दिखाई दे रहा है ना। देखो एक साधारण सा ये पर्दा, ये कर्टन लगा हुआ है, इसको भी आप आंखों से भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं। अच्छा हो, रंग अच्छा हो, ऐसा लगे तो बहुत बढ़िया लगे, ऐसा डिजाइन हो, तो आंखों से आप ये सब विषय भरे हुए हैं। हमारा चित्र कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, है ना। तो विषयों का सारा भंडार ज्यादातर हम लोग ऐसा मानते हैं कि इन विषयों में इतनी शक्ति है कि ये हमको फंसा लेते हैं, ऐसे ही मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और वास्तविक सत्य भी यही है। अरे भाई आपके घर में जो कुछ भी सामान है इन विषयों में फंस जाने के कारण ही तो है। जब आपकी बुद्धि ने उसके ऊपर अपना ठप्पा लगाया कि बस ये ले लो, तुमने उस चीज को क्या कर लिया, खरीद लिया, पकड़ लिया हमारा, इसको कहते हैं विषय। लेकिन शास्त्र ने कहा, भोलेनाथ कहते हैं इन विषयों में कोई तत्व नहीं है, इन विषयों में कोई दम नहीं है। हीरे मोती सोने चांदी, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े बिल्डिंगें, इनमें कोई तत्व नहीं है। बोले क्या मतलब। बोले महाराज अभी 5 करोड़ का फ्लैट खरीदा, आप कह रहे हो कोई तत्व नहीं है, है? विषय देखो, विषय कहां तक ले जाते हैं, है ना। तो विषय विषय तब हैं जब आपकी इंद्रियां हो। करण, करण मतलब इंद्रियां। अगर आपकी इंद्रियां नहीं है, एक व्यक्ति आंखों से रहित है, उसके पास भगवान ने नेत्र नहीं दिए, जन्मांध है अपने कर्मों के कारण। अब महाराज उसके सामने सुंदर सुंदर गहने कपड़े दिखाना प्रारंभ करो, टीवी का बहुत बड़ा सेट लाके लगा दो महाराज 1,00,000 रुपए का, उस व्यक्ति को कोई फायदा है? अगर इंद्रिय नहीं तो विषय का कोई अस्तित्व, तो विषयों का अस्तित्व किसके द्वारा है? वक्त देखो, तत्व ज्ञान किसको कहते हैं ये बड़ी साधारण भाषा में समझ लो। मैं बहुत विद्वान नहीं हूं, बिल्कुल ले मैन हूं, फिर से आपसे प्रार्थना, लेकिन वास्तविकता में तत्व ज्ञान होता क्या है, तत्व को कैसे निकाला जाता है, इस प्रक्रिया को समझने की चेष्टा करें। तो जब हमने इन विषयों को देखा जिसमें हम आप फंसे पड़े हैं, तो पता चला इनका अस्तित्व ही तब है जब आपकी इंद्रियां सही सलामत हैं। अगर आपकी इंद्रियां, कोई कानों से बहरा है, आप उसके सामने 1,00,000 संगीत बजाते रहो, वो ठूंठ की तरह बैठा रहेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो संगीत का अस्तित्व कब है? जब आपकी इंद्रिय सक्षम है, अन्यथा उस विषय का कोई अस्तित्व नहीं। आंख वाले के लिए संसार में सब चीजों का अस्तित्व है, लेकिन बिना आंख वाले के लिए कोई सबसे बड़ा सुंदर लग रहा है वो भी आपकी हां में हां मिला देगा, हां बड़ा सुंदर लग रहा, अब उसको बेचारे कोई मालूम ही नहीं सुंदरता होती क्या है, क्योंकि उसने आंखों से कभी देखा ही नहीं सौंदर्य। तो वास्तविकता में इन विषयों में कोई तत्व नहीं है। तत्व किसमें है? आपकी इंद्रियों में है। तो कहा महाराज, क्या वास्तविकता में ये इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि ये विषयों को भोग सकती हैं, इनके बगैर विषय बेकार हैं? बोले नहीं, अगर इन इंद्रियों के देवता ना हो तो ये इंद्रियां भी किसी काम की नहीं है। ध्यान देना, अगर प्रकाश ना हो, नेत्र इंद्रिय का देवता कौन है? अरे भगवान सूर्य नारायण है कि नहीं? प्रकाश है ना, हर इंद्रिय का एक देवता है। आपके श्रवण इंद्रिय का, कान जो जिसको आप लोग कहते हैं, इस इंद्रिय का देवता कौन है? दिग देवता, दिशा देवता। अगर ये दिशाएं खुली ना हो, इन दिशाओं को केवल बंद करने के लिए कितनी चीज चाहिए? अरे भाई, आपके उंगली का अगला भाग ही संपूर्ण 10 दिशाओं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। दोनों उंगली ऐसे करो और कान में लगा लो, 10 दिशाएं बंद हो गई, आपको सुनाई देना। इतना अस्तित्व तो है इन इंद्रियों का। दिशाएं समाप्त, कर्ण इंद्रिय समाप्त। ध्यान देना, आपकी नासिका इंद्रिय को एक कार्य मिला है सांस लेने का, और दूसरा कार्य मिला है सुगंधि का अनुभव करने का, दुर्गंधि सुगंधि जो भी आप कहते हैं। तो आपकी नासिका तक, यानी जो आपके पास सुगंधि दुर्गंधि पहुंचती है, वो किसका गुण है? सुगंधि दुर्गंधि है, ये पृथ्वी तत्व का गुण है। लेकिन महाराज, पृथ्वी की ये औकात नहीं है कि वो आपके नासिका तक सुगंधि दुर्गंधि को पहुंचा सके। वो करने वाला कौन है? हाँ, भगवान ने गीता ना, वायुर्गंधा निवास या, जैसे गुलाब के फूल से या सुगंधित फूल से वायु जो है उस पुष्प की सुगंधि को चुरा ले जाता है, पृथ्वी तत्व तो वहीं खड़ा हुआ, लेकिन वायु देवता ने उसकी जो है सुगंधि को क्या कर लिया? चुरा लिया हमारा, और ले जाकर आपकी नासिका के सामने से जब वो वायु गुजरा तो आपको सुगंधि का अनुभव हुआ। जब आप किसी गंदी जगह से गुजरे तो वहां पर आपको दुर्गंधि का अनुभव हुआ। अगर ये देव ना हो, है ना, अगर ये देव ना हो तो आपकी इंद्रियां भी किसी काम की, अरे भाई अगर वायु देव ना हो तो आपको सुगंधि दुर्गंधि का अनुभव ही नहीं होगा। जब तक वायुदेव हैं, आपकी नासिका जो है अनुभव कर रही है, दिशाएं हैं तो आपके कान सुन रहे हैं, रस है तो आपकी रसना इंद्रिय जो है अनुभव कर रही स्वाद का। यानी इन इंद्रियों को अगर तेजान्वित करने की शक्ति रखने वाले देवता ना हो, 25 करोड़ का हीरा ले आओ, साधारण की तो बात छोड़ दो, और एक घनघोर अंधकार वाले कमरे में रख दो और चोर से कहो इसके अंदर 1,25,00,000 का हीरा रखा, जाके चुरा लो। क्यों भाई? मिल जाएगा, ढूंढता रहेगा महाराज रात भर। लेकिन जैसे ही महाराज प्रकाश उत्पन्न होगा, वो हीरा क्या होने लगेगा? हीरे की कीमत किससे है? हैं? हीरे की कीमत अपने से है या प्रकाश से है? अगर देवता ना हो तो वो हीरा भी किसी काम का। हीरे में भी प्रकाश से ही महाराज जो है तरह तरह की ज्योतियां प्रकट होती हैं। तो इसका मतलब इंद्रियों से भी बलवान है इनके देवता। बोले अच्छा, तो ये देवता ही सब कुछ करते हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, इन देवताओं का भी एक बाप है। बोले वो कौन है? बोले जीव। ध्यान दीजिए कितनी विचित्र बात है। जब तक इस शरीर में ये जीवात्मा है, तब तक आपको विषयों का, देवताओं का, सबका अनुभव हो रहा है और देवता भी कार्य कर रहे हैं। अगर इस शरीर में ये जीवात्मा ना हो तो ये देवता भी किसी काम के, इन देवताओं का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जिस प्रकार से मृत शरीर में जिसमें से जीवात्मा निकल गई है ना, अनुभव करने वाला कौन है? अनुभव करने वाला जीवात्मा है ना। मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, मैंने ये कहा, मैंने ये सुना, ये करने वाला कौन है? शरीर तो नहीं है ना, लेकिन हम इसको अपने शरीर का धर्म मान लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम इंद्रियों का धर्म मान लेते हैं कि इंद्रियों ने सुना। इंद्रियां नहीं सुनती, इंद्रियां तो केवल माध्यम है। और अब तो ये वैज्ञानिक, पहले तो चलो वैज्ञानिक रूप से सत्य नहीं था, लेकिन अब तो ये सब चीजें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गई कि नहीं। हर चीज, जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, ये सब आपके ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। अगर ब्रेन रिस्पांस नहीं करता है तो ना आपको सुनाई देगा, ना दिखाई देगा, ना आप बोल सकते हैं, ना स्वाद ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक ब्रेन जो है आपकी बुद्धि जवाब नहीं देगी, है अंदर से कनेक्शन अगर कट गया तो महाराज आपकी आंख सब कुछ सही होगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, कान में सब कुछ सही होगा मगर सुनाई नहीं देगा, नासिका में हर चीज बीमारी होती है कि नहीं, स्मेल जो है आती नहीं आदमी को, खत्म हो जाती है, तो नासिका इंद्रिय समाप्त हो जाती है। तो अनुभव करने वाला है जीव, जो खाना पीना पहनना ओढ़ना जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं संसार में विषयों का, इन सब का अनुभव देने वाला जीव है। और ये देवताओं के ऊपर जो है अस्तित्व, सकल एक ते एक सचेता, इन देवताओं को भी अस्तित्व देने वाला है ना, जिसको कहते हैं नहीं लाखों सूर्य से चमक जाए महाराज, एक दो नहीं लाखों सूर्यों को चमका दिया जाए और मृत व्यक्ति की आंख को खोल दो पूरा, लेकिन क्या उसकी आंख कुछ देख पाएगी? क्या उसके कान को सुन पाएंगे? दुनिया भर के जो है म्यूजिक सिस्टम लगा दो उसके चारों तरफ मृत व्यक्ति के, लेकिन महाराज अनुभव करने वाला निकल गया। अब वो कान तो वही है, आंखें वही हैं, जो है त्वचा वही है महाराज, सब कुछ वही है, लेकिन उसको कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। देवता तो ज्यों के त्यों हैं, उस शरीर को अब कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो यानी इन देवताओं का भी राजा है जीवात्मा। बोले महाराज तो इसका मतलब सबसे बड़ा जीवात्मा हो गया? बोले नहीं, इन सबको एक साथ प्रकाशित करने वाला जो है सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। ये राम है, राम के अस्तित्व के बगैर जो परम सत्ता है, जिसके अस्तित्व के बगैर किसी का भी अस्तित्व नहीं है। इन सबको प्रकाशित करने वाला, चाहे वो विषय हो, चाहे वो आपकी इंद्रियां हो, चाहे महाराज देवता हो, और चाहे वो जीव हो, इन सबको एक साथ प्रकाशित करने वाला परमात्मा कहलाता है। इसको कहते हैं तत्व विवेचन। क्या समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? तत्व विवेचन में आपको क्या मिला हैं? अरे अपने बीज में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कहां पहुंचे? राम में पहुंचे कि नहीं पहुंचे। जो हमारा अपना मूल यानी ये जो हम बैठे हुए हैं और इसके अंदर बैठ के जो अनुभव करने वाला, ये कहां से आया? अरे जैसे ये वस्त्र उस खेत के बीज से आया हमारा है, वैसे ही ये शरीर, ये इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और इसके अंदर बैठकर बोलने वाला, आपके अंदर बैठकर सुनने वाला, आपके अंदर हमारे अंदर बैठकर खाने वाला, ये कहां से आए? उस मूल से आए। तो तत्व ज्ञान के द्वारा जब हमने विवेचन करके देखा तो हमारा मूल कौन निकला? परमात्मा। यानी जो हमारा बीज है वो क्या है? परमात्मा है। और परमात्मा रूपी बीज से इतना बड़ा आडंबर तैयार हो गया कि हम जिस प्रकार से किसी से छोटे बच्चे से कहा जाए कि तुम्हारा कपड़ा, उसको जो है कॉटन सीड लाके उसके सामने रखो और उससे कहो कि तुम्हारा ये कपड़ा इस कॉटन सीड से बना, तो आपके ऊपर हंसने लगेगा। हाँ, इसमें से कपड़ा कहां से आया? क्यों? क्योंकि उसको पूरे प्रोसेस का, पूरी जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए तत्व ज्ञान लाया है। तत्व विवेचन में जब हम अपने मूल में पहुंच जाते हैं तो महाराज फिर हमको कोई संशय नहीं रह जाता। लेकिन क्या इतना तत्व विवेचन करने के बाद जो सबसे बड़ी विचारणीय बात है, भगवान को ये कहना ही नहीं पड़ता, ज्ञान योग व्यवस्थिति, भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया, ये जो आपने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है अपने मूल में पहुंचने का, इसमें दृढ़ता की प्राप्ति। हमने समझ तो बहुत बढ़िया लिया, समझा भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि हमारा इसमें कोई दृढ़ विश्वास है नहीं है महाराज, क्योंकि दृढ़ विश्वास ही तो सबसे बड़ी समस्या है। हम मूल को समझ भी लें लेकिन हम अपने मूल के संग जुड़े नहीं रह पाते, इसीलिए कहा जाता है निरंतर निरंतर जब बारंबार अपने आप को आप याद दिलाएंगे, क्योंकि आप अपने अस्तित्व में जो शरीर का अस्तित्व जो हमने समझ रखा, क्योंकि जिस चीज का आप साथ करते हैं उसका साथ करते ही, जैसे आप बहुत सारे अच्छे फल हों और उन बहुत सारे अच्छे फलों में कई हों, एक नहीं चार छह दस फल हों और उसके बीच में एक खराब फल रख दीजिए, कितना? केवल एक। एक खराब फल बहुत सारे अच्छे फलों को खराब करने के लिए क्या है? पर्याप्त है। इसी प्रकार से इस शरीर और इंद्रियों का संग कर करके, शरीर क्या है? शरीर और इंद्रियां क्या है? अरे जड़ है कि नहीं है? आज ही अगर इसमें से करंट प्रवाहित होना बंद हो जाए तो क्या होगा? ये शरीर ज्यों का त्यों जड़ हो जाएगा, वहीं का वहीं जड़ हो जाएगा। बड़े से बड़ा पहलवान जो महाराज है दुनिया भर के गोल्ड मेडल जीतता है, बड़े बड़े वजन उठा करके ओलंपिक में, वो अपने ही शरीर को संभालने में सक्षम, ये जड़ शरीर की जड़ता का साक्षात प्रमाण है। जो पहलवान गोल्ड मेडल जीतता था बोले कितना उठाया? बोले 250 किलो वजन उठाकर वो खड़ा है महाराज गोल्ड मेडल के लिए। तो जिस समय महाराज उसको अपने शरीर के उठाने की बात कही गई तो पता चला कि वो अपने ही शरीर को उठाने में सक्षम नहीं, अपनी ही आंख को खोलने में सक्षम नहीं, अपने ही हाथ को हिलाने में सक्षम नहीं। कब? जब उसकी मृत्यु हो जाती है। कौन था वो जो उसके शरीर के द्वारा इतने बड़े बोझ को उठा रहा था? जब इस प्रकार से हमने इन इंद्रियों और इस शरीर की जड़ता का विवेचन किया तो पता चला कि महाराज ये शरीर और इंद्रियां तो जड़ हैं, इनके अंदर ये चैतन्य शक्ति प्रवाहित करने वाला कोई और है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम परमार्थ सत्ता कहते हैं। जब हम इस प्रकार से बारंबार बारंबार विवेचन करते हैं तब जाकर हमको ये बात समझ में आती है कि शारीरिक रूप से मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इतनी जल्दी नहीं कटेगा क्योंकि इन जड़ इंद्रियों का साथ कर करके, इन जड़ शरीर के संग विषयों के संग जुड़ जुड़कर इनका साथ कर करके जैसे वो एक फल बहुत सारे फलों को समाप्त कर देता है, वैसे ही इन जड़ इंद्रियों ने हमारी बुद्धि को भी क्या कर दिया, जड़ बना दिया है ना। इसीलिए वैज्ञानिक लोग, सांसारिक वैज्ञानिक जो है अध्यात्म का भी क्या मांगते हैं, अध्यात्म विद्या जो है कोई भौतिक विद्या नहीं है, भौतिक विद्या अलग है, आध्यात्मिक विद्या अलग है। आध्यात्मिक विद्या को आप भौतिक प्रमाण से सिद्ध करने की चेष्टा करें तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। जबकि वैज्ञानिक ये कहता है कि हमको आत्मा आत्मा की तुम बात करते हो, हमको आत्मा ला के दिखाओ कैसी होती है ना। और बहुत से लोग उनको समझाने की चेष्टा करते हैं, तब मूर्खता है। जिस चीज को केवल अनुभव गम्य माना गया है, ये तभी संभव होगा जब आप बारंबार ज्ञान योग व्यवस्थिति यानी अपनी जो परम सत्ता है उसके बारे में मूल से बारंबार जुड़ने की जब चेष्टा करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि धीरे 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 आपकी जड़ बुद्धि ये चैतन्य बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा तम गिरिजामति, मेरी बुद्धि साधारण नहीं है, आत्मा होकर भोलेनाथ आप साक्षात मेरे अंदर विराजमान हैं और माता भगवती पार्वती कोई और नहीं, मेरी बुद्धि ही आपकी धर्मपत्नी है, चैतन्य हो गई, वो जड़ता का उसने परित्याग कर दिया और हमारी बुद्धि जो है जड़त्व में स्थित होने के कारण अपने अस्तित्व को भौतिक रूप से ही तलाशने की चेष्टा करती है। और वैज्ञानिकों को हर अध्यात्म का हर जो है भौतिक प्रमाण चाहिए, फिजिकल चाहिए, और अध्यात्म में फिजिकल नहीं है, ये आध्यात्मिक आत्मिक रूप है। सूक्ष्मता का जो परम सूक्ष्म रूप है जहां तक जाना है ना, क्योंकि आप और हम देखते हैं महाराज, सूक्ष्मता की यदि बात की जाए तो भौतिक जगत में भी इतनी सूक्ष्मता है कि उसके लिए महाराज वैज्ञानिकों को भी क्या चाहिए होते हैं, माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं कि नहीं चाहिए होते? जब आपके ब्लड टेस्ट होते हैं या बहुत सारी बीमारियों के टेस्ट होते हैं तो उसके लिए भी माइक्रोस्कोप, और उसके बाद माइक्रोस्कोप भी फेल हो गया तो फिर आया महाराज इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जो किसी भी चीज के जो बहुत छोटी सूक्ष्म वस्तु है उसको 6000 गुना बड़ा करके दिखाता है, कितना, तब जाकर वो एक छोटे से रूप में दिखाई देता है। ऐसा जब जो है एक देखने का यंत्र आया तब वैज्ञानिकों ने महाराज जब भौतिक जगत में जो अस्तित्व रखती है जिसको हम लोग वायरस कहते हैं या बहुत सारी बीमारियों के कीटाणु हैं, बहुत सारे जीव हैं, लेकिन जरा उस राम की सत्ता को देखो, जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि इतना सूक्ष्म जीव, ध्यान देना, इतना सूक्ष्म जीव जिसका वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप से विश्लेषण किया, कब, जब उसका जो है उनको चित्र दिखाई दिया 6000 गुना बड़ा, और 6000 गुना किसी चीज को बड़ा करके देखने पर भी वो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, पिन के पॉइंट की तरह, जरा उसके मूल की आप कल्पना करके सोचो कितना बड़ा होगा, और उसमें भी राम समाहित है, चैतन्य है कि नहीं है वो, अरे एक्टिव है कि नहीं है, और एक्टिव होने के साथ साथ उसका पूरा परिवार है कि नहीं है, बताओ। इतना सूक्ष्म जिसके लिए साधारण माइक्रोस्कोप भी काम नहीं करता है, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप चाहिए, स्पेशल वाले जो एक एक चीज का 6000 गुना चित्र स्पेस जो है दिखाते हैं, तब जाकर उस सूक्ष्म आपकी बीमारियों का विश्लेषण होता है। लेकिन जरा विचार कीजिए कि इतने सूक्ष्म जीव के अंदर जो एक्टिविटी है वो देने वाला कौन है, वैज्ञानिक ये सोचने को तैयार नहीं है, कैसे एक्टिव है वो, किस तरीके से चैतन्य है, ये चैतन्य सत्ता की सूक्ष्मता है, कोई नहीं पता लगा सकता। हमारा आपका बीज रूप मूल कहां पे है कुछ नहीं जानते हैं। तो जब इस प्रकार से तत्वज्ञानी विश्लेषण करता है अपना, तब जाकर उसको आश्चर्य होता है। भगवान ने गीता में कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, तब वो आश्चर्यमय दृष्टि से अपने स्वरूप की ओर निहारता है कि ऐसा सूक्ष्म और परम चैतन्य है, जितना सूक्ष्म उतनी ज्यादा शक्ति और जितना स्थूल उतना ही ज्यादा शक्तिहीन। कैसा विचित्र जो है संसार में वो देखा जाता, इतने बड़े बड़े जीव और उनको मारने के लिए एक छोटा सा वायरस, अस्तित्वहीन वायरस जिसको आप हाथ में देख नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, इतना सूक्ष्म जीव बड़े बड़े जीवों को मारने के लिए पर्याप्त है, ऐसी चैतन्य शक्ति कहां से आ रही उसके अंदर? क्या हमने कभी विचार करने की चेष्टा की? तो जब ऐसी आश्चर्यमयी दृष्टि से उसने देखा, कहां से इतनी शक्ति उसको प्राप्त हुई महाराज, कि एक दिन में आपको जो है डेंगू के वायरस ने, मच्छर ने हानि पहुंचाई या डेंगू के वायरस ने हानि पहुंचाई? हैं? क्यों भाई, मच्छर को क्यों दोष देते बेचारे को? हैं? मच्छर ने तो केवल जो गंदगी आपने इकट्ठी की उसमें अपना खाना पीना तलाश किया और उसके हाथ पैर में जो वायरस लग गए वो आप तक उसने क्या कर दिए, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे ने? वो मच्छर आपको दे गया और वो गंदगी जो आपने अपने आप डाली थी उसी गंदगी ने एक सेकंड के अंदर महाराज आपके खून को पानी कर दिया, आप समाप्त हो गया, हॉस्पिटल तक ले जाते महाराज जो है सारे आपके प्लेटलेट्स क्या हो गए, खत्म हो गए, लड़ाई लड़ते लड़ते प्लेट्स, खून पानी नहीं बनता, एचबी को खा जाता, प्लेटलेट्स लड़ते हैं बेचारे। भगवान ने जो है लाखों की संख्या में अरबों की संख्या में महाराज हमको लड़ाई लड़ने के लिए जीव दिए शरीर में, और वो लड़ाई लड़ते हैं महाराज उस डेंगू के एक जो अस्तित्वहीन, जिसको आप माइक्रोस्कोप से भी देखने में, साधारण माइक्रोस्कोप से वो दिखाई नहीं देगा, ऐसा वायरस 5 घंटे के भीतर आपको मृत्यु के घाट में पहुंचा देता है, इतनी शक्ति है उसके अंदर, और इतना बड़ा शरीर लेके हम तोप बने घूम रहे हैं महाराज, अपने आप को इतना बड़ा तोप समझ रहे हैं, पता नहीं हम क्या हैं, और एक नन्ना सा अस्तित्वहीन जिसको आप देख नहीं सकते, कब आया, कब किस रूप में आपके शरीर में आ गया, कुछ किसी को पता नहीं महाराज, ये उस परम चैतन्य सत्ता का चमत्कार है, ये अध्यात्म है। तब वो कहता आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, कोई एक आश्चर्य की दृष्टि से परम तत्व रूप में उसका विवेचन करता है और फिर इस दृढ़ स्थिति को वो छोड़ता नहीं है। अगर छोड़ दिया तो महाराज क्या होगा, फिर से इन्हीं इंद्रियों के संग जड़ हो जाओगे, फिर अपने अस्तित्व को भूल जाओगे, और परिणाम ये होगा फिर वही सुख दुख और फिर वही कर्ता भोगता, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, बस इसी तराजू को लेकर सारी दुनिया में क्या करते रहोगे, घूमते रहोगे। इसलिए तीसरा जो गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति, यानी अपने आप को इस तत्व ज्ञान के द्वारा पूर्णतया परमात्मा में क्या कर लो, हाँ, इस संसार से हटाकर, शरीर से हटाकर, इंद्रियों से हटाकर कहाँ स्थित हो जाओ, उस परम चैतन्य में जिसके अंदर इतनी शक्ति है महाराज कि एक अस्तित्वहीन चीज को इतनी शक्ति उसने बल दे रखा है महाराज कि समाज के समाज को नष्ट कर देता है। देखो, कोई अस्तित्व का पता ही नहीं है, कहां पे कौन सा वायरस जन्म ले रहा है महाराज, तरह तरह के वायरस पूरी दुनिया में, ना जाने क्या क्या नाम वैज्ञानिक देते रहते हैं, उनको नाम कुछ भी दे दो महाराज, हैं? नाम देने से कोई वो बंद बिगड़ थोड़ी जाएगा, लेकिन जो खेल है देखने वाला वो है आत्मसत्ता का, कि इन जो है ऐसे इतने सूक्ष्म जीवों को शक्ति देने वाला कौन है। जब आप उस मूल में पहुंचेंगे तब आपको उस परम चैतन्य सत्ता का क्या होगा, दर्शन होगा, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। और इसी स्थिति को धीरे धीरे क्या करो, दृढ़ करो, तो आज आपका भजन सुनाने वाला होता है ना, ये जो है आपका भजन गिरीश भाई का आज सुनाने वाला बनता है कि कैसे प्राप्त की जाए ये दृढ़ स्थिति, जरा सुनो।
तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो।
संसार के सहारों को छोड़कर उसके सहारे को ढूंढो जो सबका प्रकाशक है।
मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा, मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा।
ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत, जो कुछ भी है वो मेरे परमेश्वर का ही रूप है।
मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा, मेरे दिल में हरदम, मेरे दिल में हरदम तेरी लौ लगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। रजा हो जो तेरी, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। फिकर हो जो दिल में वो अपनी खता का,
भगवान को दोष मत दोगे, हे प्रभु तूने मेरे संग ऐसा क्यों किया। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, ब्रह्मज्ञानी। हम सारा जीवन भगवान को दोष देते रहते हैं, हे प्रभु तूने मेरे संग ऐसा क्यों किया, हे भगवान तूने मेरे संग, हे मेरे भाग्य तू क्यों बिगड़ गया। इसलिए
फिकर हो जो दिल में वो अपनी खता का, जिकर हो जो लब पर वो तेरी वफा का, फिकर जिकर हो जो लब पर वो तेरी वफा का, उठे जो सदा वो, उठे जो सदा वो तेरी बंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो।
इसलिए बिल्कुल निर्णय कर लो, अंतिम निर्णय कर लो, क्या
मैं साधक हूँ इसके सिवा कुछ नहीं हूँ,
मैं केवल तुम्हारा प्रेमी हूँ, इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ना मैं अमीर ना मैं गरीब, ना मैं छोटा ना मैं बड़ा, ना मैं काला ना गोरा, ना मोटा ना पतला, ये सब नाटक मात्र है, अस्तित्व ही नहीं। इसलिए हे प्रभु
मैं साधक हूँ इसके सिवा कुछ नहीं हूँ, मैं तेरा हूँ तुझसे जुदा कुछ नहीं हूँ, मैं तेरा हूँ तुझसे जुदा कुछ नहीं हूँ, यही गीत लब पे, यही गीत लब पे मेरे हर घड़ी हो तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो रजा हो जो तेरी रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो तेरी साधना ही मेरी
ये ताली बजाने वाला गीत नहीं है ये सुभाष चंद्र बोस वाला गीत है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और ये गीत कहता है तुम अपने आप को मुझे दे दो मैं तुम्हें भगवान दूंगा। ताली ताली बजाने का समय कहाँ है महाराज, है ना, इतना समय है ही नहीं कि हम ताली बजाएं। भगवान की रजा के संग अपने आप को एक कर देना, इसी का नाम है ज्ञान योग। हाँ, ज्ञान योग व्यवस्थिति का मतलब परमात्मा में दृढ़ स्थिति। और हमारा परमात्मा कैसा है, अजर अमर अविनाशी अखंड परम तत्व परम सत्ता, जिसके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं, वो परमात्मा ही हमारा अपना स्वरूप है और वो परमात्मा ही हमारा प्रारब्ध है, प्राप्तव्य है। भक्ति की भाषा में कहें तो वो परमात्मा हमारा प्राप्तव्य है, वेदांत की भाषा में कहें तो वो हमारा निज स्वरूप है, और दूसरी भाषा में कह दो तो मुक्ति है। अलग कुछ भी नहीं, मिलने वाला एक ही है, कोई दूसरा अलग से मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की मर्जी के संग अपनी मर्जी को मिला दो, और यदि आपने भगवान की मर्जी के संग अपनी मर्जी नहीं मिलाई, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की, तो सात जन्म तक भटकते रहो, गीता रटते रहो, वेद रटते रहो। इसीलिए हमारे यहां उदाहरण दिए गए हैं, रावण भी वेद का ज्ञाता था और हनुमान जी भी वेद के ज्ञाता थे, दोनों वेद के ज्ञाता थे, है कि नहीं, हनुमान जी भी और रावण भी, लेकिन दोनों में एक ने राम को पा लिया और एक ने राम से क्या कर ली, दुश्मनी कर ली। तो निर्णय आपको करना है, कल अगले गुण के ऊपर चर्चा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।